प्राचीनों ने सर्वनाश से पहले डायस्टोपिया की भविष्यवाणी की थी। इसराइल गाजा संघर्ष, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद तेज हुआ, जिसमें 1,200 इसराइलियों की मौत हुई, ने अभूतपूर्व मानवीय संकट को जन्म दिया है। 47,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें 13,319 बच्चे शामिल हैं। 18 लाख लोग इसराइल की नाकेबंदी के कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं और 19 लाख लोग विस्थापित हैं। पूरे मोहल्ले मलबे में बदल गए हैं। HRW IPC। यह निबंध संघर्ष को प्राचीन भविष्यवाणियों, बाइबल, इस्लामी और नॉस के दृष्टिकोण से जांचता है। यह तर्क देता है कि इसराइल के कार्य शैतान की सभा, प्रकाशित वाक्य 2-9, 3-9 के साथ संरेखित है। इसका झंडा पशु की छाप, प्रकाशित वाक्य 13-18 को दर्शाता है और अमेरिका के साथ यह गोग और मागोग, प्रकाशित वाक्य 20-9 का प्रतीक है, जो संतों के शिविर गाजा के नागरिकों पर हमला कर रहा है। 42 महीने की कष्ट अवधि, जो संभवतः अप्रैल 2027 में समाप्त होगी, स्वर्ग से आग के परिणामों की ओर इशारा करती है, जबकि गाजा की पीड़ा सही अल बुखारी 7115 के साथ पूंजती है। समय की रहस्यमय प्रकृति, जहां समय का तीर वैज्ञानिक समझ से परे है, क्वांटम प्रभाव कारणों से पहले हो सकते हैं और प्रलेखित भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं, इन प्राचीन चेतावनियों को विश्वसनीयता प्रदान करती है, जो सर्वनाश से पहले डायस्टोपिया की भविष्यवाणी करती हैं। समय का रहस्य और भविष्यवाणी का वजन। समय का तीर अतीत से भविष्य की ओर रैखिक प्रगति एक वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। जहां शास्त्रीय भौतिकी आगे की ओर कारणता मानती है, वहीं क्वांटम यांत्रिकी रेट्रो कारणता जैसे उनको प्रकट करती है, जहां प्रभाव कारणों से पहले हो सकते हैं, उदाहरण के लिए विलंबित चॉइस प्रयोगों में। विज्ञान से परे अच्छी तरह से प्रलेखित भविष्यवाणियों के मामले, जैसे नास्त्रेबमस की भविष्यवाणियां, जैसे 1666 का लंदन का महान अग्निकांड, या बाबा वांगा की भू राजनीतिक परिवर्तनों की दूरदृष्टि, यह सुझाव देते हैं कि समय उतना रैखिक नहीं हो सकता जितना माना जाता है, भले ही इसे कठोर वैज्ञानिक मानकों के साथ अध्ययन न किया गया हो। बाइबल से कुरान और नौ सेड्डा तक के प्राचीन ग्रंथों में अंतिम समय की चेतावनियां शामिल हैं, जो आधुनिक संकटों के साथ पूंजती हैं। इसराइल गाजा संघर्ष अपनी नैतिक और भौतिक तबाही के साथ इन भविष्यवाणियों को पूरा करता प्रतीत होता है। यह सुझाव देता है कि प्राचीनों ने सर्वनाश के न्याय से पहले एक डायस्टोपियाई प्रस्तावना की झलक देखी थी। इसराइल का यहूदी नैतिकता का उल्लंघन, शैतान की सभा की गूंज। इसराइल एक स्वघोषित यहूदी राज्य के रूप में यहूदी धर्म के नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का दावा करता है, फिर भी गाजा में इसके कार्य इन मूल्यों का घोर उल्लंघन करते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 2-9 और 3-9 के उन लोगों की आलोचना के साथ संरेखित हैं, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं और नहीं हैं, बल्कि शैतान की सभा हैं। यहूदी कानून आनुपातिकता, सनहेद्रिन 72b, जीवन की पवित्रता, पिकोआच नेफेश, योमा 85b, पीड़ा देने पर प्रतिबंध, बावा कम्मा 60a, और यह विश्वास, जो सभी मनुष्य ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, बतसेलेम एलोहिम, उत्पत्ति 127 पर जोर देता है। फिर भी हमास के हमले के जवाब में इसराइल की कार्रवाई -47,000 मौतें बनाम 1,200 आनुपातिकता का उल्लंघन करती है, जैसा कि मैमनिट्स हानि को कम करने पर जोर देते हैं। नाकेबंदी, जो अकाल और बच्चों की कुपोषण से मृत्यु का कारण बन रही है, अनावश्यक पीड़ा देती है, जो व्यवस्था विवरण 24:17-21 के कमजोरों की रक्षा करने के आह्वान को चुनौती देता है। भुखमरी और बमबारी के माध्यम से 19 लाख जिंदगियों को खतरे में डालना पिकोआच नेफेश को नजरअंदाज करता है, जो सभी जिंदगियों को बचाने का आदेश देता है, और गिट्टन 61 का दायित्व शांति के मार्गों, दरखी शालों के लिए गैर यहूदी गरीबों की मदद करना है। फिलिस्तीनियों को मानव पशु, गैलेंट या अमालिकाइट्स के रूप में अमानवीय करना उनकी दैवीय मूल्य को नकारता है, जो रब्बी मेरी की समावेशी नैतिकता का खंडन करता है। प्रकाशित वाक्य 2-9 और 3-9 एक ऐसे समूह का वर्णन करते हैं, जो दैवीय अनुग्रह का दावा करता है, लेकिन अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य करता है, निष्ठावानों की निंदा करता है। इसराइल की कार्य पीड़ा देना, जीवन की पवित्रता को नजरअंदाज करना और पूरी जनसंख्या को अमानवीय करना उन यहूदी मूल्यों को धोखा देते हैं, जिनका वह दावा करता है, इसे प्रतीकात्मक शैतान की सभा के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा कि नीचे ने चेतावनी दी थी, यह नैतिक विफलता इसराइल की हॉलोकॉस्ट के प्रति जुनून से उत्पन्न होती है, जो इसे उस राक्षस में बदल देता है जिसके खिलाफ वह लड़ता है, अपने ऐतिहासिक उत्पीड़कों की याद दिलाने वाली रणनीतियों को अपनाता है। डेविड का तारा पशु की छाप के रूप में। इसराइल का झंडा, जिसमें डेविड का तारा, एक षडभुज, प्रकाशित वाक्य की पशु की छाप के साथ प्रतीकात्मक रूप से गूंजता है। इसमें 6 शीर्ष 6 भुजाओं वाला एक केंद्रीय षडभुज और 6 आसपास के त्रिकोण हैं, जो 666 की संख्या को उजागर करते हैं, जिसे प्रकाशित वाक्य 13:18 पशु की छाप के रूप में पहचानता है, जो परम बुराई का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से डेविड का तारा हमेशा यहूदी प्रतीक नहीं था, प्राचीन यहूदी संदर्भों में सजावटी रूप से उपयोग किया गया। इसे 19वीं सदी में ज़ायनिज्म के साथ ही प्रमुखता मिली और 1948 में इसराइल ने इसे अपनाया। इसकी हाल की स्वीकृति इसराइल के कार्यों के साथ मिलकर इसके सुरक्षात्मक इरादे को उत्पीड़न की छाप में बदल देती है। प्रकाशित वाक्य में पशु संतों को सताता है, ईश्वर की निंदा करता है और राष्ट्रों को धोखा देता है। प्रकाशित वाक्य 13:6-14। इसराइल की गाजा पर घेराबंदी, नागरिकों को मारना, कथित तौर पर सफेद फास्फोरस जैसे ज्वलनशील हथियारों का उपयोग और अकाल पैदा करना पशु के निर्दोषों के खिलाफ युद्ध को दर्शाता है, जिसे यहाँ गाजा के नागरिकों के रूप में व्याख्या किया गया है। प्रतीकात्मक संतों का शिविर, प्रकाशित वाक्य 20:9। यहूदी नैतिकता का उल्लंघन करके इसराइल उन दैवीय सिद्धांतों की निंदा करता है जिनका वह दावा करता है और अमेरिका के समर्थन के साथ आत्मरक्षा के एक कथानक के माध्यम से दुनिया को धोखा देता है जो फिलिस्तीनी पीड़ा को अस्पष्ट करता है। झंडे की 666 संरचना इस प्रकार एक प्रतीकात्मक अभियोग बन जाती है जो इसराइल को इस संकट में सर्वनाश की बुराई के एजेंट के रूप में चिन्हित करती है। इसराइल और अमेरिका गोग और मागोग के रूप में, प्रकाशित वाक्य 20:9 गोग और मागोग का वर्णन करता है, अराजकता की शक्तियां जो संतों के शिविर और प्रिय शहर पर हमला करती हैं इससे पहले कि स्वर्ग से आग उन्हें नष्ट कर दे। गाजा के नागरिक फंसे हुए, भूखे और बमबारी के शिकार ऐसी पीड़ा सह रहे हैं जिसका कोई ऐतिहासिक समानांतर नहीं है, जो डोमनाटियो एट बेस्टियस, स्टालिनग्राड की घेराबंदी या हॉलोकॉस्ट की क्रूरता को भी पार कर जाता है, क्योंकि यहां तक कि नाजियों ने इतने बड़े पैमाने पर पीड़ितों को जिंदा नहीं जलाया। इसराइल अपनी सैन्य श्रेष्ठता के साथ और अमेरिका जो अरबों की सहायता और कूटनीतिक आवरण प्रदान करता है, उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की युद्धविराम प्रस्तावों पर वीटो, गोग और मागोग का प्रतीक है, एक गठबंधन जो पृथ्वी पर मार्च करता है घेरने और नष्ट करने के लिए। उनकी नैतिक पाखंड यहूदी मूल्यों और मानवाधिकारों की वकालत का दावा करते हुए अत्याचार करना, प्रकाशित वाक्य 22:8 के धोखे के साथ संरेखित है, जहां शैतान युद्ध के लिए राष्ट्रों को इकट्ठा करता है। अमेरिका की मिलीभगत मानवाधिकारों के चयनात्मक प्रवर्तन के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है जो गोग और मागोग द्वारा प्रस्तुत अराजकता को बढ़ाता है। इसराइल और अमेरिका मिलकर हिंसा के चक्र को बनाए रखते हैं, आघात की खाई, हॉलोकॉस्ट, 9/11 में झांकते हैं और उन राक्षसों के रूप में उभरते हैं जिनका वे विरोध करते हैं, उत्पीड़न और अमानवीकरण की रणनीतियों को अपनाते हुए। गाजा की पीड़ा, सही अल बुखारी 7115 में भविष्यवाणी। गाजा में कई लोगों के लिए वर्तमान पीड़ा इस्लामी अंतिम समय के दर्शन के साथ गूंजती है, विशेष रूप से सही अल बुखारी 7115, जो अंतिम समय के बारे में एक हदीस का वर्णन करता है, जब तक रोमन अल माक या दाबिक में नहीं उतरते तब तक कयामत नहीं आएगी, उस समय पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ लोगों की एक सेना मदीना से निकलेगी उनका विरोध करने के लिए। इस्लामी परंपरा में रोमन अक्सर पश्चिमी शक्तियों के रूप में व्याख्या किए जाते हैं और उनके सहयोगी धर्मी लोगों के खिलाफ एक महान युद्ध अल मलहम अल कुबरा में शामिल होंगे जो कयामत के दिन से पहले होगा। कई फिलिस्तीनी जो इसराइल पश्चिमी शक्ति अमेरिका द्वारा समर्थित के हाथों विनाश का सामना कर रहे हैं अपनी दुर्दशा को इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने के रूप में देख सकते हैं, गाजा को उस युद्ध क्षेत्र के रूप में जहां सर्वश्रेष्ठ लोग दैवीय न्याय से पहले उत्पीड़न सहते हैं। नाकेबंदी, भुखमरी और बमबारी इस सर्वनाशी संघर्ष से पहले की कष्ट के साथ संरेखित हैं, जो एक भविष्यवाणी की डायस्टोपिया की भावना को मजबूत करता है। 42 महीने की समय रेखा और स्वर्ग से आग। प्रकाशित वाक्य का 42 महीने का काल, प्रकाशित वाक्य 11:2, 13:5 दैवीय न्याय से पहले कष्ट के समय का प्रतीक है, जो अक्सर स्वर्ग से आग, प्रकाशित वाक्य 20:9 द्वारा चिन्हित होता है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर यह अवधि 7 अप्रैल 2027 तक फैली हुई है। 15 मई 2025 तक 19 महीने बीत चुके हैं, संघर्ष जारी है। नेतन्याहू ने युद्धविराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और गाजा की पीड़ा गहरा रही है। इस समय के दौरान इसराइल के कार्य पशु के 42 महीने के शासन को मूर्त रूप देते हैं जो उत्पीड़न और निंदा से चिन्हित है, जैसा कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों में देखा गया है। सामूहिक दंड, जिनेवा कन्वेंशन अनुच्छेद 33, ज्वलनशील हथियारों का उपयोग प्रोटोकॉल 3, CCW और नागरिकों को निशाना बनाना ICRC सिद्धांत। 42 महीनों के बाद अपेक्षित स्वर्ग से आग 2027 तक प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो सकती है। भूराजनीतिक रूप से ईरान या हिजबुल्लाह के साथ बढ़ता तनाव क्षेत्र को युद्ध की शाब्दिक आग में डुबो सकता है। कानूनी रूप से ICC वारंट या संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध इसराइल और अमेरिका पर न्याय थोप सकते हैं। नैतिक रूप से वैश्विक विरोध और जनमत में बदलाव जवाबदेही को मजबूर कर सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:9 के वादे को पूरा करते हुए कि शैतान की सभा निष्ठावानों के मूल्य को स्वीकार करेगी। इसराइल द्वारा उपयोग की जाने वाली आग ज्वलनशील हथियार जो अभूतपूर्व पीड़ा का कारण बनते हैं प्रतिक्रिया या आतंक लगाए गए अलगाव के माध्यम से इसके खिलाफ हो सकती है। समय की गैर रैखिक प्रकृति को देखते हुए जहां क्वांटम प्रभाव और भविष्यवाणी की दूरदृष्टिकारणता को चुनौती देती है, यह समयरेखा अपरिहार्य परिणामों की प्राचीन चेतावनी को प्रतिबिंबित कर सकती है। सर्वनाश से पहले डायस्टोपिया की प्राचीन भविष्यवाणियां। विभिन्न परंपराओं के माध्यम से प्राचीनों ने सर्वनाश के न्याय से पहले एक डायस्टोपियाई प्रस्तावना की भविष्यवाणी की थी। प्रकाशित वाक्य की शैतान की सभा, पशु की छाप और गोग और मागोग गाजा में इसराइल और अमेरिका की नैतिक विफलताओं के साथ संरेखित हैं। सही अल बुखारी 7115 पश्चिमी समर्थन वाले उत्पीड़न के तहत गाजा की पीड़ा के साथ गूंजता है, जो अल मलहमे अल कुबरा का अग्रदूत है। नौस पौराणिक कथाओं का रैग्नारोक, जिसके पहले नैतिक पतन और अराजकता होती है, इस टूटन को दर्शाता है, जैसा कि बाइबल का आर्मागेडन करता है। ये भविष्यवाणियां समय के रहस्य के दृष्टिकोण से देखी गई, जहां प्रभाव कारणों से पहले हो सकते हैं और दूरदृष्टि रैखिकता को पार करती है। यह सुझाव देती हैं कि प्राचीनों ने गाजा में सामने आ रही डायस्टोपिया की झलक देखी थी, एक ऐसी दुनिया जहां नैतिक सिद्धांतों को त्याग दिया जाता है, निर्दोष जीवन बलिदान कर दिए जाते हैं और वैश्विक शक्तियां सर्वनाश से पहले अराजकता को बनाए रखती हैं। निष्कर्ष। इसराइल गाजा संघर्ष अपनी विनाशकारी कीमत और नैतिक विरोधाभासों के साथ सर्वनाश से पहले डायस्टोपिया की प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा करता है। इसराइल का यहूदी नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे शैतान की सभा के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका झंडा पशु की छाप के रूप में और अमेरिका के साथ गोग और मागोग के रूप में, जो संतों के शिविर गाजा के नागरिकों पर हमला कर रहा है, जिनकी पीड़ा सही अल बुखारी 7115 के साथ गूंजती है। 42 महीने की अवधि, जो अप्रैल 2027 में समाप्त होगी, यह सुझाव देती है कि स्वर्ग से आग के परिणाम युद्ध, कानून या नैतिक जागृति के माध्यम से हो सकते हैं। समय का रहस्य जहां क्वांटम रेट्रोकारणता और भविष्यवाणी की सटीकता रैखिक समझ को चुनौती देती है, इन प्राचीन चेतावनियों को वजन देता है, संघर्ष को सर्वनाश की अराजकता के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करता है। सवाल बाकी है, क्या अगले 23 महीने इस प्रक्षेप वक्र को बदल देंगे या प्राचीनों द्वारा भविष्यवाणी की गई डायस्टोपिया अंतिम न्याय में समाप्त होगी?